તારીખ 6/10/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 30
કિસી ને કિસી પ્રકાર સે કહીએ સુખ મૃત્યુ રહે જાતી હૈ તો એ પહેલે ડ્યુટી છે તો ઇસકા હોને કા ક્યા કારણ હૈ એસા રહેને કા ક્યા કારણ હૈ निशंकता से यह सत है यह मेरे हमारे आत्मा निशंकता से यह सत है ऐसा घर नहीं होता है सत मैंने के अनादि अनंत होने से कहने की आवश्यकता नहीं कि अभी आप बात है क्योंकि बाटा होता तो अनादि अनंत सत है मैंने अस्तित्व का आधार लिया जाता है जैसे बताया था भगवान जी का आधार हम लेते हैं साथ में लेकर नहीं घूमते लेकिन आधार बुद्धि तो हमारी संपत्ति की रहती है कि हमारे पास तो रहती है किसी की हमें दरकार नहीं है या हमें किसी की लाचारी करने का जरूर नहीं पड़ेगी ऐसा ये सब मेरे अस्तित्व है वो आधार पारमार्थिक आधार का ही अपना विषय है इसको सभी दर्शन का विषय कहते हैं दृष्टि का विषय कहते हैं क्योंकि दृष्टि तो अस्तित्व को ही ग्रहण करती है उसका मनुष्य क्या है क्या नहीं है वो दृष्टि में नहीं है इसमें आनंद है या नहीं है वो दृष्टि नहीं देखती ज्ञान है या नहीं है दृष्टि नहीं देखती वो उसका अस्तित्व को ही देखती है तो पहले बात लिया दृष्टि प्रदान लिया श्रद्धा प्रदान लिया निशंकता से यह सत है ऐसा दृढ़ नहीं हुआ है ये श्रद्धा विषय और अथवा कह करके ज्ञान प्रदान करके इस सत को ही एलोबरेट के दे कर दिया है कि ये परमानंद रूप ही है ऐसा निश्चय क्योंकि श्रद्धा तो ज्ञान पूर्वक होती है और जो प्रयोजन है वो सुख का और आनंद का है जीव को तो ये मैं परमानंद रूप हूँ मेरा पूरा सुख मेरे में भरा है वो भी निशंक रूप से निश्चित नहीं हुआ है उसका आधार लेने का जो भी प्रकार आएगा वो नहीं आएगा तो ऐसा नहीं होने से जीव को संसारिक पदार्थ में कहीं न कहीं सुखेच्छा रहती है और सुखेच्छा रहने से आधार बुद्धि रहती है आधार बुद्धि रहने से निकट बुद्धि रहती है तो मिथ्या को जाने का अवसर नहीं रहता अथवा तो और इसको खोलते हैं किसी को कि कोई ऐसे मनुष्य होते हैं तो जैसे बहुत वैराग्य है बहुत कम जरूरत वाला हो रुखी रुखी खा लेता हो सारी किसी जीवन जीता हो खान पीन में अच्छा उसके लिए क्या
आनंद आ रहे थे
उसके लिए भी वो एक बात खोल करके रख दी है ऐसा भी कोई हो सकता है हमें कोई भौतिक भूखा साधन की कोई जरूरत नहीं है दो टाइम रोटी एक टाइम रोटी खा लिया बात खत्म पार्टी में लगे रहते हैं सत्संग में लगे रहते हैं निवृत्ति क्षेत्र में रहते हैं बड़े शहर में नहीं रहते छोटे निवृत्ति क्षेत्र में रह जाते हैं कोई आश्रम में उनके लिए क्या क्षति रह जाती है उनका भी क्षति रह जाती है क्या रह जाती है अथवा करते हुए अथवा ऐसा भी बनता है कि मुमुक्षुता में भी ऐसी मुमुक्षुता में भी कितने ही आनंद का अनुभव होता है तो क्या बोलेगा हमको बहुत शांति है इधर हम बम्बई कलकत्ता जैसे संभाल दीजिए इधर बहुत शांति है स्वाध्याय करते हैं आदमी से रहते हैं कोई जरूरत नहीं अपेक्षाएं शांति है क्या भूल गया
मन को सह
वर्तमान अवस्था में संतुष्ट हो गया तो पर्याय बुद्धि वर्तमान अवस्था को स्वीकार की उसमें संतुष्ट होना ये पर्याय बुद्धि मैंने दर्शन मुक्ति के बताओ चारित्रमो बंद है वो क्योंकि शांति मानसिक शांति अशांति का कारण नहीं है चारित्रम बहुत मंद रहता है धार्मिक प्रवृत्ति है उसके शुभ भाव बहुत कम होते हैं शुभ भाव की प्रवृत्ति में रहता है पूजा भक्ति स्वाध्याय लेकिन कुछ उसी में आनंद है शांति है ठीक पड़ा है ये उल्टा हो गया सबकी परिस्थिति वो है कि वहां उसको असंतोष आना चाहिए इतना होने के बावजूद भी मुझे प्रत्यक्ष मेरी आत्मा क्यों नहीं बना जहां असंतोष चालू होना चाहिए वहां संतोष आया ये उल्टा हो गया अथवा तो मूर्खता में भी उतने ही आनंद का अनुभव होता है इससे बाह्य साधा के कारण भी इतनी ही बार प्रिय इसके परिवर्तन होता है तो बाह्य साधा के कारण से भी प्रिय लग जाता है मामूली हो इस सोने के लिए हमें यही अनुकूल है के लिए हमको ये अनुकूल पड़ता है इसके बजाय दूसरा अनुकूल नहीं पड़ता इसलिए हम वसाई रखते हैं हर हालत में हमें कोई तकलीफ नहीं है वो बात नहीं है तो भी जिसको जिसका आदत जैसे तो कुछ छोटे मोटे बाह्य साटा के कारण भी उसको प्रिय लग जाते हैं तो इसका सिम्टम दिया है कि इतना मुमुक्षुता होने पर भी तो वर्तमान स्थिति में शांति और आनंद लगता है और कुछ बाह्य साधा के कुछ प्रसंग में उसको ठीक लगता है प्रियता आ जाती है ये ठीक है मेरे मुझे ये ठीक है मेरे ये बहुत गहरा से लिखा है ये जागृति का भाव सुधर भीतर में जो आत्म जागृति होती है इसके अभाव का ये सूचक जागृति वाला वहां चौंकता है क्योंकि दर्शनों की प्रवृत्ति क्या है कि किसी चीज को अच्छा बुरा देखना भ्रांति यामोह इसकी प्रवृत्ति क्या है कि जो चीज अच्छी बुरी है ही नहीं मूल में से नहीं है सदंतर नहीं है उसको अच्छी बुरी देखे ये ठीक है ये ठीक नहीं है भले वो कोई मामूली बात हो फिर भी चिंगारी तो थोड़ी हो या बड़ी हो आग लगाने के लिए तो पर्याप्त है दर्शन मुक्ति भले चिंगारी हो पसंद करने का बाईस आता के कारण भी कितनी बार प्रिय लगते हैं वहां आश्चर्य प्रकट नहीं किया क्या मुमुक्षुता है आश्चर्य लगता है मुमुक्षुता भी ऐसा होता है क्या हो सकता है क्या कि बाईस आता का कारण प्रिय लगे और इससे इस लोक की अल्प भी सुपेक्षा रहा करती है वो जाने नहीं जाने अनजाने में भी रहा करती है जिससे जीव की योग्यता रुक जाती है वो सम्यक दर्शन समीप जाने में वो बाधक है ये नास्ति वाला है हम अस्थि का कितना भी प्रकरण सोचे चिंतन करें विचार करें मंथन करें लेकिन ये शायद इतनी सूक्ष्म है और ध्यान में लेने योग्य है और इसका हमें पता नहीं रहा तो वो बात तो बात ही रह जाएगी काम
संसार में जीवन भर में हर एक मनुष्य जाते रहेगी तो
તો આ બુદ્ધિ પૂર્વક કે બુદ્ધિ પૂર્વક ક્યાંક ને ક્યાંક સાતવામાં તો શું બુદ્ધિ થઈ જ જાય છે, આવી જાય છે.
એટલે તો આ વિષય ઉપર એમણે ફોકસ લાઈટ નાખ્યું છે. સમ્યક દર્શન જો નિર્વાણ કા મૂળ કારણ હૈ વો કોઈ મામૂલી ચીજ તો નહીં હૈ. ઉસકી પૂર્વ તૈયારીયાં કૈસી હોતી હૈ જિસસે યે મહાન રત્ન કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. इसके जैसे कोई रत्न खरीदने वाला कोई दरिद्री तो हो ही नहीं सकता, दरिद्र आदमी तो कोई रत्न खरीद नहीं कर सकता. ये सम्यक दर्शन तो अलौकिक रत्न है, लौकिक रत्न में इतना क्या चाहिए, ये तो अलौकिक रत्न है. तो उनके लिए तो उसकी बराबरी खरीदने की तैयारी आएगी जब काम ऐसे नहीं
थोड़े थोड़े सौदन रखने
बहुत ज्यादा इसलिए यहाँ से चालू किया है. पूर्णता का लक्ष्य हुआ
जी
मुक्षता ही, जब भी जागृति रहेगी वरना संतुष्ट हो जाएगा. ये जो लिया के साता का कारण प्रिय लगता है इसका क्या कारण है, अगर ये मुक्षता आ जाती तो ये भूख निकल जाती, भूखी तो भी निकल जाती क्योंकि जागृति है रहने वाली. અગર પહેલા વાળા લક્ષ્ય હો ગયા તો દૂસરા ઓટોમેટિક જીતની જાગૃતિ આતી હૈ પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય હોને કે બાદ ઇતની જાગૃતિ આઈ તો જ્ઞાન લેને કરુણા કરકે પૂરી સિક્વન્સ અપને અનુભવ કી એલોબરેટ કરકે રખ દી હૈ હમારે સામને. અગર નહીં બતાએ તો ભી પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય હો રહા હો ઉસકા યે સિક્વન્સ
બચ્ચે
ઇતની બચ્ચે કો નિયમ ઇતની તાકત વાલી હૈ કે ઇસ નિયમ કે આધાર પર ચલને વાલે પરિણામ
ટિક નહીં સકતે
ઓર જગહ નહીં જાયેગા. તો યે ઇતના ઓટોમેટિક હૈ ઓર ઓટોમેટિક હોને મેં એક બડા ફાયદા હુઆ હૈ કે કર્તૃત્વ બુદ્ધિ સે યે નહીં કરના પડતા હૈ. ભૂમિકા મેં પરમ થોડા ખુલા હૈક મેં તથા પહેચાન હોને પર સદગુરુ મેં પરમેશ્વર બુદ્ધિ રખકર उनकी आज्ञा से प्रवृत्ति करना इससे परम विजय इससे परम योग्यता की प्राप्ति होती है. यह परम विजय जब तक नहीं आता तब तक जीव में योग्यता होती रहेगी. जिस पुरुष का बोध झेलना है उसमें परम विजय आए बिना योग्यता हो सकती है. ચોથે નંબર કામ એક દો તીન ચાર ક્યાં રચના वो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसे ज्ञानी की इच्छा अनुसार चलना चाहिए ऐसा लीला जब आदि सभी शास्त्र अपनी इच्छा अनुसार चलता हुआ जीव अनादिकाल से भटक रहा है। पांचवा, जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा अनुसार अर्थात आज्ञानुसार न चला जाए तब तक अज्ञान की निवृत्ति होना संभव नहीं है। छठा, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन वह कर सकता है कि जो एक निष्ठा से तन मन और धन की आसक्ति का त्याग करके उसकी भक्ति में जुटाए। यद्यपि ज्ञानी भक्ति की इच्छा नहीं करते परंतु मोक्षाभिलाषी को, देखो यह मोक्षाभिलाषी है, परंतु मोक्षाभिलाषी को वह किए बिना उपदेश परिणमित नहीं करेंगे। ये भक्ति के बिना जो उनके आया वो घृत हुआ इनके श्रीमुख से परिणमन होने वाला
नहीं है।
और मनन तथा विधिध्यास आदि के हेतु इसलिए मुख्य को ज्ञान की भक्ति करना करनी चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। पति पसंद इसके सपोर्ट में आपने बात किया है,
दोस्तों नंबर में जगह अच्छा
ग्यारह अनंत काल तक जीव स्वच्छंद से चलकर परिश्रम करे तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्ति नहीं करता। अनंत काल जरा आगे आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, मेरा सुनने का डिफेक्ट है ना, आप फेंके में सुन नहीं पाऊंगा। अनंत काल तक जीव शोषण से चलकर परिश्रम करे तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं करता, परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अंतर्मुक्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। देखो और सब तैयारी हो चुकी है, एक ज्ञानी की आज्ञा का आराधक नहीं है, केवल ज्ञान को पहुंचाएगा। जैसे एक जगह से फिसलने से खाई में गिर सकता है, कहीं भी ऐसी जगह से फिसला तो खाई में चला जाता है, वैसी वो बात यानी कि आगे ऐसी चीज है तो और सब तैयारी कर लेता है, लेकिन यहाँ भूल भुला होता है तो उसको गड़बड़ रह जाती है और फिर तो केवल ज्ञान तक लाइन क्लियर हो जाती है, ऐसा हो जाता है क्योंकि दूसरी सब तैयारी है, ऐसा ही बात लिया है। और उन्होंने तो ये भी लिया है कि अनुपूर्व का शास्त्र अध्ययन करने वाला जीव अगर भूला है तो वो सत्पुरुष की पहचान के लिए समझ में आता है, क्यों कि सत्पुरुष है वो अटपटी दशा से रहते हैं, वेद सम्यक दृष्टि होने से इनकी श्रद्धा कुछ और है, इनकी बाह्य परिस्थिति कुछ और है, कारण से उसकी पहचान आसान नहीं है। और पहचान नहीं होने से शास्त्रों की हजारों बार समझ में आते होने पर भी ये प्रैक्टिकल साइड में भूलता है, तो इधर भूला हुआ फिर पूरा भूला हुआ है, ऐसा करके
अपने सत्स्वरूप की पहचान करो या सत्पुरुष की पहचान करो, एक ही भाव के दो पहलू,
दो स्टेज है, कहीं किसी को सत्पुरुष की पहचान हुए बिना अपने स्वरूप की पहचान हुई हो ऐसा नहीं बना है, न बन सकता है कभी,
पहले कभी हुई
है
उन भाव में कभी हुई हो,
हाँ पूर्व कहीं भी कैसे भी, लेकिन ये एक तो स्टेज है इसका, पहले स्टेज आए बिना दूसरा स्टेज आ नहीं सकता, ये क्रम है इसका। इसका पूरा स्पष्टीकरण ऐसा है कि सत्पुरुष है ये ज्ञान की प्रगट ज्योति है और हमारी आत्मा है वो ज्ञान की अप्रगट ज्योति है।
ज्योत
तो है लेकिन अप्रगट है, सामर्थ्य रूप है या हम लेवे वेदन को तो भी वो आवृत है, अध्यासित है। तो जो प्रगट है, निरावरण है, उसको हम नहीं देखें। इतने अंधे हैं कि प्रगट को नहीं देखे, इतने अंधे हैं वह प्रगट को देखेंगे कहाँ से? ये संभव है क्या? कैसे संभव है? जो उतना अंधा है कि प्रगट ज्योत को नहीं दिखता है वो प्रगट ज्योत को कैसे देखे? इसलिए वो संभव नहीं है। वो पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज। इसलिए तो साफ से काम में उसको पहला संकेत बोला है।
वर्तमान में अभाव होने पर का वर्तमान में अभाव होने के कारण जो नंदी की प्रतिमा है उसे सत्संग के रूप में माना जाए या नहीं?
मान करके संतुष्ट होना है तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। संतुष्ट होना है तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारे पास नहीं है और हम इसके समक्ष कुछ भी करें अलग बात है, लेकिन हमारा असंतोष चालू रहना चाहिए। क्यों? क्यों कि कल्याण के प्रथम चरण में सजीवन मूर्ति अनिवार्य है।
सजीवन मूर्ति पहले कभी आई हो, पहले पूर्व में कभी आई हो और वर्तमान में नहीं आई,
आई होगी। पहचान इस वक्त पहचान हुआ था क्या? ये बड़ा सवाल है।
उस समय में
गुरुओं में तो अनंत बार आई है, एक दफे नहीं आई है सजीवन।
सदगुरु का समागम पूर्ण हुआ था परंतु उस समय में मैंने उनके वचनों का अंगीकार नहीं किया। उस समय उनके वचनों का अंगीकार नहीं किया और वर्तमान में ऐसी परिस्थिति में जिनवाणी की जो अध्ययन करता है, जिन भगवान के दर्शन करते हैं, उसमें ऐसी कुछ बात आई। उस हमारे अनुभव में ऐसे है कि ऐसी बात तो मैंने कभी सुनी, ऐसा अनुभव प्रकाश अनुभव प्रकट हो सकता है या नहीं?
ये नहीं है, उसमें वो बात नहीं होने वाली है। ऐसी जैसी होनी चाहिए ऐसी नहीं होने वाली।
जैसे सर
छोटा वाला ज्ञानामृत है आपका,
इसमें भी इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान में जो स्थिति है
उसमें है क्या? कहीं
कई जगह है, कई जगह ऐसी पूर्व में ऐसी परिस्थिति हुई होगी कभी तो वर्तमान में तरह का कोई आत्मज्ञान हुआ है
वो संस्कार झेला हो तो
देखिए संस्कार झेला हो तो ही बात है।
संस्कार झेला हो तो बात अलग है।
वर्तमान में तो वो
वर्तमान में तो
साक्षात नहीं है,
लेकिन हमारी आत्मा में अगर संस्कार झेला हो तो
उस समय नहीं झेला
स्थिति।
तो भाई जैसे संस्कार झेला हो सब कुछ तो होता है ना
क्या? ऐसा संस्कार बुद्धिपूर्वक भी झेला जाता है। बुद्धिपूर्वक हो तो पता चल जाता है, बुद्धिपूर्वक हो तो पता नहीं भी चलता है, ऐसा बनता है। लेकिन हम तो हमको तो हमारे परिस्थिति को ठीक करना है जब तो उसमें ہمارے لیے ایسا لینے کی ضرورت نہیں ہے پورو میں مل گیا ہو.
جی
ہم کو تو پورو میں آنند بار ملا ہے, گرودیو جیسے بھی آنند بار ملے ہیں,
برابر
بھاولی کے سنت بھی آنند بار ملے ہیں, اور تیرتھنکر ساکشات بھی
ملے ہیں,
لیکن ہم نے سنسکار نہیں جیلے جلدی ہوتے تو یہ استھتی جو ورتمان میں ہماری ہے وہ نہیں کی.
پھر یہ سنتوش ہو جائے گا سر بھائی, پھر یہاں سنتوش ہو جائے گا, ورتمان میں سنتوش ہو جائے گا کہ سنتوش ہو جائے گا کہ جیو کو ایسا ہے.
کوئی بھی پرکار سے کیا لکھتے ہیں, پہلے سے یہ دو تین چوتھا پیراگراف جیو اپنی کلپنا سے کسی بھی پرکار سے سب کو پراپت نہیں کر سکتا,
کلپنا سے نہیں کر سکتا,
جیو اپنی کلپنا سے کسی بھی پرکار سے اس کو پراپت نہیں کر سکتا, سجیون مورتی کے پراپت ہونے پر ہی ست پراپت ہوتا ہے, ست سمجھ میں آتا ہے, ست کا مارگ ملتا ہے اور ست پر دھیان آتا ہے. کتنا بنتا ہے
ایسا سیمت جی کو کون سا یوگ ملا تھا؟
پورو میں ملا تھا,
نہیں
کرتے ہیں ان کو ان کو تو جاتے تھا, پورے سمجھ درشن بھی ہو چکا تھا کہ وہ گر گئے تھے.
بولا جی تو پرشن تھے کہ ہم نے تو پورو بہنا ہوا تھا, ہم نے تو ورتمان بہنا گردیو ہوا تھا.
نہیں ملا نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں ورتمان بہن میں ملا نہیں ہے, وہ میں کہتا ہوں ہم نے مان لیا ہے کہ گردیو ہم کو ملا تھا, یہ تو میرا کہنا ہے. آنند بار ملے اس کا مطلب کیا کہ اب کے بار جو ملا ہے وہ بھی نہیں ملا ہے, جیسے آنند بار ملا وہ نہیں ملا ہے ویسے اب کے بار میں ملا ہے وہ نہیں ملا ہے, یہ میرا کہنے کا مطلب ہے.
اچھا اب کے بار میں ملا ہوا نہیں ملا ہوا ایسا ہے, اب ان کا پرتیش نہیں ہوتے ہوئے بھی آج وہ ست پروش کے ایسا پرتیتی کرتے سے کرواتے
وہ طاقت نہیں آ سکتی. اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ جیو اپنی کلپنا سے کسی بھی پرکار کے ست کو پراپت نہیں کر سکتا, سجیون مورتی کے لکش بنا, ساکشات سجیون مورتی کے لکش بنا کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ سب جیو کے لیے نیا بندھن ہے. کیا نیا کرم بندھن ہے؟ یہ میرا ہاردک ابھیمت ہے, میرا یہ ہدے ہے, میرا ہارٹ کو کھول کر کے بتاتا ہوں, آئی ایم اوپننگ مائی ہارٹ, ایسا کہتے ہیں.
یہ بات
ہے, بہت گمبھیر بات
ہے,
یہ تو ہندی ہوا ہے, گجراتی میں بہت اچھا فون ہے. કોઈ પણ પ્રકારે જીવ પોતાની કલ્પના કરીને સતને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, સજીવન મૂર્તિ પ્રાપ્ત થયે જ વર્તમાનમાં સત પ્રાપ્ત થાય છે, સત સમજાય છે, સતનો માર્ગ મળે છે, આ બધું એ વખતે બને છે એમ કે છે. જ્યારે સજીવન મૂર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એને સત સમજાય છે એટલું નહીં, સતનો માર્ગ મળે છે, સત ઉપર લક્ષ આવે છે, પદાર્થ નિર્ણય થાય છે શું આ, અને સત ઉપર ધ્યાન જાય છે. સજીવન મૂર્તિના લક્ષ વગર, એની જરૂરત છે એમ લક્ષમાં આવ્યા વગર જે કાંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે જીવને બંધન છે, આ અમારું હૃદય છે, વાત કરકે દે દિયા કલેજા, મારા કલેજે બહુ વાત પડી જાય. કશા કરું
ये कहना चाहते हैं क्या कि वर्तमान में उनको सजीवन मुक्ति मिली, सजीवन गुरु का संयोग, सजीवन गुरु का संयोग उनको इसमें मिला है वर्तमान में.
श्रीमद जी ने वर्तमान में सजीवन मूर्ति मिला एम कहवा मांगे छे,
इनको इनका अनुभव ये बोलता है कि जिस वर्तमान में मुझे मिला था तब मुझे प्राप्ति हुई थी, और इसके पहले मैंने कोई दूसरा करने में कसर नहीं रखी, फिर भी मुझे नहीं प्राप्त हुआ. उन्होंने अनेक भवों की स्मृति की, जाति स्मरण नहीं आती, एक भव की स्मृति नहीं थी, बहुत भवों की स्मृति थी, और बहुत भवों में सजीवन मूर्ति के प्राप्त हुए बिना कई प्रकार के उतने परिश्रम किए था, और फिर मिलने से ऐसा चुटकी बजा के काम हुआ, तो उनको ये लगा कि निचोड़ रखा है इधर. तो बहुत कुछ हमारा जीव ने भी किया, लेकिन हमको
सुना
मिला नहीं.
अब्बा जी से करीब से
उनको पढ़ा था स्वाध्याय में, मंदिर जी में यही स्वाध्याय में पढ़ा था 400 नंबर वाला. जितने विषय जैसा उपाधि योग आराधन करते हैं तब से मुक्तपणा वर्त रहा है, ऐसा मुक्तपणा और उपाधि मैंने निवृत्ति प्रसंग में भी वर्तता नहीं था, ऐसी निश्चल दशा हमारी माक्सर सूद छठ से. मैंने अभी श्रावण वज में लिख रहे 8.5-9 महीना हो गया, एक धारा से वर्त की आ रही है.
तो इससे मतलब क्या हुआ कि जो तिथि का निर्णय लिया है तो इसी दिन जमीन व्यक्त नहीं हुआ, इससे पहले जमीन व्यक्त नहीं
था. आप तिथि बता रहे थे त्यारे समय में सुनती हुई खुला होती है.
नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि हमारी मुक्त दशा में जो एक धारा रूप तीव्रता आई है, एक धारा रूप जो तीव्रता आई है, वो पिछले 8.5 महीने में हमारी दशा में बहुत वृद्धि हुई है, विकरांता में और हमारे आत्म परिणति में बहुत तीव्रता आ गई है, ऐसा वो सूचित है. क्या होता है सामान्यतः, क्या होता है कि निवृत्ति प्रसंग में ऐसा बनता है, जबकि उनको प्रवृत्ति प्रसंग में ऐसा बन रहा है. अब देखिए वो इनका उम्र है इस वक्त के 25वीं साल का, 24वीं साल में उसको सम्यक दर्शन हुआ है, 25वीं साल की 24वीं साल के प्रारंभ में उसको हुआ है. कार्तिक शुद्ध पांचम का पहला पत्र है, उसमें लिखा है कि हमको ज्ञान दशा की प्राप्ति हुई, अब तो मोक्ष की मुझे दरकार नहीं, ऐसा करके उन्होंने दृष्टि का जोर दिया. अच्छा, उसके बाद श्रावण माक्सर शुद्ध छठ महीने करीब 11 महीना हो चुका है इस दशा को. 11 महीने के बाद उनकी जो दशा है वो इतनी तीव्र हुई, मुंबई में से पत्र लिखते हैं, तो इन दिनों में वो कारोबार में से निकल नहीं पाते थे, व्यवसाय में से वो निवृत्ति नहीं ले रहे थे, मिलते नहीं थे, उतने काम की भीड़ थी, नहीं चाहे तो भी नए नए काम आने लगे, और व्यवसाय में वो सारे जो पार्टनर्स के ग्रुप थे उनके वो आधार बिंदु थे, सभी डिसीजन वो लेते थे, तो वो वहां से खिसक नहीं सकते थे, अगर वो खिसके तो सब एक परिणाम बिगड़े पूरे के पूरे. तो उनको तो क्या है कि हर हालत में पुरुषार्थ करने का था.
ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बाहर का वातावरण में ऐसी स्थिति में उनको अंतर परिणति में बिल्कुल निर्वृत्ति रूप परिणाम थे, है। इस प्रकार की बाहर की भीड़ होते हुए भी वे भीतर से निवृत्त थे, इस बात को उन्होंने कुछ खेल प्रकाश किया है। ऐसा खेल प्रकाश क्यों किया हमने कि दूसरों को कोई ऐसा नहीं लगे। इस प्रकार से 453 में ऐसी भावना व्यक्त की है, 453 में किताब उसके पूरा पढ़ी है तो और थोड़ा स्पष्ट हो जाए। क्या कहना चाहते हैं
कि ये बहुत असाधारण आराधक है, साधक है,
कह सकते भीड़ में बैठे हुए भी
असाधारण है। ये पत्र ये सूचित करता है कि प्रतिकूल प्रसंगों में सामान्यतः परिणति को धक्का रहता है या प्रसार थोड़ा कमजोर होता है, दृष्टि में फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञानियों को
अनुकूल नहीं मानते,
में थोड़ा मचक आ सकता है, लेकिन इनकी विशिष्टता को हो या असामान्यता को हो वो उतनी थी कि उन्होंने नीति माक्सर सुच्छक से लेकर के लिखा है। कितना उसका ध्यान है कि अभी तक मैं पत्र लिख रहा हूँ, श्रावण वन में 8.5 महीना हुआ है, मेरी स्थिति ऐसी है कि अगर मैं निवृत्ति में उतना आराधक बना यानी उतना मैं निर्जरा नहीं कर पाता उतना मैंने प्रबंधन में किया है, ये इनकी विशेषता है। और आगे जाकर के कभी मचक खाए तो वो भी उन्होंने खोला है निश्चित रूप से कि अभी हमारी परिणति में थोड़ी मचक आई है तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होती है, तो 28 साल की उम्र में थोड़ा ऐसा हुआ। वो भी कितना आगे जा करके, जैसे कि हमने एक तो हमारा तल्ला पूरा बना लिया, हम दूसरे तल्ले में हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें 6 ईंट लगाई उसमें 2 गिर गई, या 10 ईंट लगाई थी उसमें 3 गिर गई, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि पहले वाले में कुछ गड़बड़ी है, तो ये तो इनके खुद की उनको जानकारी का विषय है, किसान लोगों का विषय है, मुमुक्षुओं का ये विषय नहीं है। मेरा कहना का उतना ही अभिप्राय है कि कहीं भी उन्होंने अपनी दशा की कमजोरी लिखी हो तो मुमुक्षुओं को समझना ये वो आसान नहीं है कि किस लेवल की ये बात चल रही है, क्योंकि 28 के साल में उनको भावना हो गई थी कि मैं नग्न दिगंबर मुनि होकर के जंगल में चला जाऊँ। तो उतनी तीव्र दशा में कोई कमजोरी आई हो, और उनको तो सरलता उतनी थी कि वो भी वो अभिव्यक्त करते थे। इसका मतलब नहीं है कि ये अगले साल वाले किसे भी कमजोर हुए हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं हो सकता।
ऐसी परिस्थिति में मजबूत थे,
बहुत मजबूत थे। और उनकी ये विशिष्टता बताती है 25वें साल की कि जिस काम की भीड़ में उपयोग रहना मुश्किल हो जाए आत्मा में, ऐसी स्थिति में लगातार एक धारा 8-8 महीना से इतनी मुक्त दशा बरतती है, इतनी मुक्त